हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर 3 को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है परमाणु संरचना, इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, और परमाणु क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले किस भारतीय और किस विदेशी वैज्ञानिक ने बताया है हम जानते हैं। परमाणु क्या होता है? क्या परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं? परमाणु कहाँ मौजूद होता है? क्या हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी गैसेस हैं, क्या उन सब में परमाणु मौजूद है? इन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विशालकाय सूर्य से लेकर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर, पृथ्वी पर हिमालय, बुर्ज खलीफा से लेकर पानी, हमारे आसपास मौजूद हवा, सब कुछ परमाणु से ही बने हैं। परमाणु से ही सब बना, पर आज परमाणु की बनावट पढ़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम परमाणु के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। परमाणु क्या होता है इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। अब हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। मैं फिर से आपको एक बार परमाणु के बारे में बताता हूँ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार लगभग 10^-10 मीटर परास का होता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले परमाणु संरचना का एक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज, परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप, रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, न्यूट्रॉन की खोज, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, परमाणु का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, अवोगाद्रो संख्या, परमाणु की स्थिति, समस्थानिक और समभारिक जैसे प्रमुख विषयों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी अपने किताब के पेज नंबर 13 को देखिए। पदार्थ के रूप में परिवर्तन के बारे में प्राचीन समय से ही मनुष्य जिज्ञासु रहा है। जैसे पानी में नमक डालने पर नमक दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका स्वाद पानी में आ जाता है। कोयला जलकर थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। पदार्थ की अदृश्यता व विभाज्यता के बारे में ईसा पूर्व में ही ग्रीक व भारतीय दार्शनिक परिचित थे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नाद ने ईसा पूर्व 6 शताब्दी में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। कन्नाद ने इसे परमाणु नाम दिया। अन्य भारतीय दर्शन शास्त्री कात्यायन ने बताया कि ये कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियोलिपस ने इस अविभाज्य कण को एटम्स कहा, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य, अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सके। ये सभी सुझाव दर्शन पर आधारित थे, इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है जिसको न तो नष्ट कर सकते हैं नहीं उत्पन्न। तीसरा, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग कर यौगिक अणु बनाते हैं। छठा, रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणुओं का संयोजन, वियोजन अथवा पुनर्विन्यास होता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रायोगिक श्रृंखला से स्पष्ट हुआ कि परमाणु में कुछ छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें अपरमाणविक कण कहा गया। पदार्थ का रूप बदलना हमारे लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। आपके आसपास कितने ऐसे पदार्थ हैं जिनके रूप अभी भी बदल रहे हैं? उसकी एक सूची बनाइए और उनके कारणों के बारे में लिखिए। उदाहरण के लिए, जैसा कि आपकी किताब में दिया है, नमक का पानी के साथ मिलना और नमक का अदृश्य हो जाना यह पदार्थ का रूप बदलने का एक उदाहरण है। किसी भी वस्तु का जलना, जलने के बाद उसका रंग बदल जाना, यह भी एक उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण को खोजिए और उनके कारणों को स्पष्ट कीजिए। अपने शिक्षक से इसके बारे में चर्चा कीजिए। परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कर्णाद ने बताया था। उन्होंने कहा था कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, और कर्णाद ने ही इसका नाम परमाणु दिया है। लगभग उसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस और लिओलिपस ने अपने देश में उसी परमाणु का नाम एटम दिया, क्योंकि उस समय ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा नहीं था, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से नहीं जा सकती थी, तो डेवलपमेंट दोनों जगहों पर लगभग समान समय में हुआ था, परंतु नाम अलग अलग थे। 1808 में पहली बार रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कुछ प्रमुख बिंदुए हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों की श्रृंखला से हमें यह पता चला कि परमाणु ही सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु से भी छोटा है कुछ होता है, और परमाणु को भी अन्य कणों में बांटा जा सकता है। वो छोटे कण जिनसे परमाणु बना होता है उसे अपरमाणविक कण कहते हैं, इंग्लिश में इसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। यह किस प्रकार से पाए गए, इनकी खोज कैसे हुई, किन व्यक्तियों ने इनके बारे में सबसे पहले खोजा, और इनकी बनावट कैसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, किताब को देखिए। परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज। विद्युत विसर्जन नलिका एक लंबी कांच की नलिका होती है जिसके दोनों सिरों पर धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वह इससे एक निर्वात पंप जुड़ा रहता है जिसके द्वारा नलिका में दाब घटाया बढ़ाया जा सकता है, तथा इसके द्वारा नलिका में निर्वात भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर विद्युत विसर्जन नलिका के बारे में बताया गया है और उसकी बनावट कैसी होती है यह बताया गया है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज को पढ़ते हैं, किताब को देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज। जे.जे. थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। थॉमसन ने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। कैथोड किरण के गुण, पहला गुण, यह सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, तीसरा यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है, चौथा यह जब किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है, पांचवा यह ऋणावेशित कणों से बनती है, छठा इन कणों का E/m मतलब आवेश बटा द्रव्यमान एक समान होता है, सातवां यह वस्तुतः द्रव्य किरणें होती हैं। जे.जे. थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती हैं। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 पाया। प्रयोगों द्वारा कैथोड किरणों के गुणों से यह प्रमाणित हुआ कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसलिए परमाणु का शेष भाग जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है वह धनावेशित होना चाहिए। यहां पर हमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किस प्रकार से की थी, उन्होंने किस प्रकार के प्रयोग किए थे और कैथोड किरण किसे कहा जाता है। दरअसल जे.जे. थॉमसन ने उच्च वोल्टता का उपयोग कर नलिका में कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता देखा था और उन्हीं किरणों को जे.जे. थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा था। फिर उन्होंने कैथोड किरणें के कुछ गुण बताए हैं, जैसे यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है, कैथोड किरणें जब किसी गैस से गुजरती हैं तो उसे आयनित कर देती हैं, यह ऋणावेशित कणों से बनती हैं और कैथोड किरणें जिन कणों से बने होते हैं उसका आवेश बटा द्रव्यमान एक समान होता है। कैथोड किरणें द्रव्य किरणें होती हैं। जे.जे. थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती हैं और इसी कण को जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वह कण होता है जिससे कैथोड किरणें बनती हैं। बाद में प्रयोगों द्वारा भी यह प्रमाणित होता है कि कोई भी परमाणु पूरी तरह से उदासीन होता है, उसमें एक कण ऋणावेशित होता है और दूसरा धनावेशित। जो ऋणावेशित कण होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो धनावेशित कण होता है वो न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। किताब को देखिए। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्ड स्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब पर उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की, जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। धन किरणें के गुण, पहला धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, दूसरा इनका आवेश बटा द्रव्यमान अनुपात नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, तीसरा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है, चौथा यह धन आवेशित कणों की ही बनी होती है, पांचवा यह भी द्रव्य किरण ही होती है। सन 1919 में इस धन कण की पहचान प्रोटॉन के रूप में की गई तथा बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेशित कण प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन की खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी और उन्होंने धन किरणें तथा एनोड किरणें के बारे में बताया था। धन किरणें धन कण से बने होते हैं, जिसके अपने कुछ गुण होते हैं जो हमने पढ़ा है अभी, और धन कण की ही पहचान 1919 में प्रोटॉन के रूप में की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ई गोल्डस्टीन ने धन कण के बारे में और धन किरणों के बारे में 1886 में ही बताया था, जबकि प्रोटॉन के बारे में 1919 में हमें पता चला। यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन दोनों की संख्या और आवेश समान होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने किताब के पेज नंबर 14 को देखिए। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद थॉमसन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10^-10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसकी तुलना उसने एक मिठाई प्लम पुडिंग से की, जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं। हम इसको समझाने के लिए तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके गुदे को धन भाग व उसमें उपस्थित बीज को इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। इस प्रतिरूप को प्लम पुडिंग प्रतिरूप का नाम दिया गया। कुछ समय बाद ही इस प्रतिरूप को खारिज कर दिया गया क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। अब चूंकि परमाणु के बारे में हमें कुछ पता चल चुका था, तो अब वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि परमाणु की बनावट है क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है। इसके लिए 1898 में प्रोटॉन शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा होगा, उस समय उसे धन कण के नाम से जाना जाता होगा क्योंकि प्रोटॉन तो 1919 में सामने आया। तो उस समय जे.जे. थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग नामक एक प्रतिरूप बनाया जिसमें उन्होंने परमाणु के बनावट की व्याख्या की। स्टूडेंट्स, आपने तरबूज का नाम जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। तरबूज के अंदर लाल कलर का गुदा होता है और उसमें जगह जगह पर छोटे छोटे बीज होते हैं। थॉमसन ने भी इसी प्रकार का एक प्रतिरूप बनाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज में लाल गुदे होते हैं और बीज होती हैं, उसी प्रकार से परमाणु में भी लाल गुदे की जगह धनभाग और जहां बीज उपस्थित है वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। हालांकि यह प्लम पुडिंग के नाम से फेमस प्रतिरूप बाद में फेल हो गया क्योंकि परमाणु की इस प्रतिरूप के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं हो सका। प्लम पुडिंग के चित्र को समझने के लिए आप अपने किताब के पेज नंबर 14 पर चित्र संख्या 3.3 को देखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार की जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ वृत्ताकार आवरण था। उसके इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण 90 डिग्री पर, कुछ कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकले। तीसरा, 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग से लौट आया। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन के इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा, समस्त धन आवेश परमाणु में एक जगह पर केंद्रित है। तीसरा, धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम है। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, परमाणु का समस्त धन आवेश व द्रव्यमान उसके मध्य में छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर होती है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तेज गति से चक्कर लगाते रहते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। तीसरा, धन आवेशित नाभिक व ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। चौथा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। पहला, धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा जिससे ऊर्जा में लगातार कमी होगी व इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी नहीं रहेगा। दूसरी कमी यह है कि रदरफोर्ड परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सके। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग को समझने के लिए आप अपनी किताब के चित्र 3.4 को देखिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिन्होंने 1911 में यह प्रयोग किया था, यह प्रयोग
बहुत ही फेमस रहा है और यह काफी सफल हुआ। इसके द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वह आज भी उपयोग किया जाता है। रदरफोर्ड ने एक पतली सी पन्नी पर जो कि लगभग 100 नैनोमीटर या फिर 10^-7 मीटर का है, उस पर उन्होंने अल्फा कणों से बौछार की। क्या आप जानते हैं कि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। सोने के जिस पन्नी पर रदरफोर्ड अल्फा कणों से बौछार कर रहे थे वह पन्नी चारों ओर से जिंक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, उस जिंक सल्फाइड से घिरा हुआ था। वह पूरी तरह से बाउंड्री के रूप में था, जैसे क्रिकेट का फील्ड, क्रिकेट के फील्ड पर जिस प्रकार से बाउंड्री होती है उसी प्रकार से यहां भी ZnS का बाउंड्री था, और जहां पिच था क्रिकेट के फील्ड पर, वहां पर यहां पर सोने की पन्नी लगी हुई थी जिस पर अल्फा कणों की बौछार हो रही थी। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने यह प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने जो प्रेक्षण प्राप्त किया वह निम्नलिखित थे। उन्होंने देखा कि अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गया, मतलब उन कणों को कोई परेशानी नहीं हुई। जिस प्रकार से वो गए उसी प्रकार से सीधे निकलते चले गए। कुछ कण 90 डिग्री और कुछ कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकले, मतलब उनमें जरा सा टर्निंग आया, उनके रास्ते थोड़े से बदल गया। और बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ। इसका मतलब यह है कि 20,000 में से कोई एक कण सीधे जाकर अपने ही रास्ते पर लौट आए। ऐसा होना बहुत रेयर था, परंतु इसी कण की वजह से रदरफोर्ड ने यह पाया कि परमाणु का जो बिल्कुल मध्य वाला भाग है, बिल्कुल बीच वाला भाग है, वह सॉलिड है, उससे टकराकर अल्फा कण बिल्कुल अपने ही रास्ते पर लौट आता है। इसके बाद रदरफोर्ड ने तीन निष्कर्ष निकाले। पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, मतलब वहां कुछ भी नहीं होता, वह बिल्कुल खाली होता है। और दूसरा कि परमाणु में समस्त धन आवेश परमाणु की एक जगह पर केंद्रित होता है। धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान जो परमाणु के बिल्कुल मध्य में केंद्रित है वह परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है। इसके बाद रदरफोर्ड ने इन निष्कर्षों के आधार पर नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु के द्वारा हमें पता चलता है कि परमाणु का समस्त धन आवेश व द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर होती है। उसके बाद हमें कक्ष या कोष के बारे में पता चलता है। कक्ष या कोष वह वृत्ताकार पथ होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाते रहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसके आसपास ज्यादातर भाग रिक्त होता है। फिर रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपने ही पथ पर कैसे घूमता रहता है, वह उस धन आवेशित नाभिक को छोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल जाता। तो इसका कारण यह है कि धन आवेशित नाभिक व ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थूल विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु के विद्युत उदासीन होने का कारण बताया, और वो यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। रदरफोर्ड यह नहीं बता पाए कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो वह ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे धीरे धीरे उसकी ऊर्जा लगातार कम होगी और वह नाभिक में गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड यह नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बताया था, यह भी उनके इस प्रतिरूप में एक कमी के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप को पढ़ा, जिसमें उनके प्रयोग के प्रेक्षण को पढ़ा, उसके बाद फिर प्रयोग में जो निष्कर्ष निकले उसको पढ़ा। उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसके बारे में पढ़ा, और फिर उस प्रतिरूप की जो कमियां हैं उन्हें भी समझा। इसके लिए आप अपने किताब के चित्र 3.5 और चित्र 3.4 को जरूर देखें। चित्र 3.5 में यह दिखाया गया है कि जब अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के पास आते हैं तो कुछ कण 90 डिग्री और कुछ कण 120 डिग्री से मुड़ जाते हैं, बाकी सारे कण लगभग अपने सीधी पथ पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप है उसका भी एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, जो आपके किताब के पेज नंबर 15 पर चित्र संख्या 3.6 में उपस्थित है। अब हम आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक है। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते, परंतु आवेश रहित होने के कारण इनकी पहचान में कठिनाई आई। 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज हो गई, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चूंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और फिर बाद में प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका था, तो इन दोनों को जोड़कर परमाणु का प्रतिरूप बनाया गया था। फिर परमाणु का वजन, इलेक्ट्रॉन का वजन और प्रोटॉन का वजन भी मापा गया। सामान्य रूप में ऐसा होना चाहिए था कि परमाणु का वजन इलेक्ट्रॉन के वजन और प्रोटॉन के वजन के जोड़ के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक पाया गया। इसका कारण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में यह सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, जो इस वजह से आसानी से नहीं खोजे जा सके क्योंकि वह आवेश रहित होते हैं। 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की गई, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। तो जो परमाणु है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जोड़ प्रोटॉन के द्रव्यमान जोड़ न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर पाया गया, और तब न्यूट्रॉन को भी एक सफल खोज के रूप में जाना जाने लगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब आगे पढ़ते हैं, किताब में पेज नंबर 15 को देखिए, जहां हम बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप पढ़ेंगे। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप भौतिकी नियमों के अनुरूप नहीं था। 1912 में निल्स बोर ने संकल्पनाओं पर आधारित नया परमाणु प्रतिरूप दिया। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। इन्हें कोष अथवा कक्ष कहा जाता है। इन कक्षों को 1, 2, 3, 4 या KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसका फॉर्मूला MVR होता है, वो h/2π या इसके गुणज होता है। यहाँ h प्लैंक नियतांक है। तीन, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा अथवा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का क्रमशः उत्सर्जन व अवशेषण होता है। आप अपने किताब में पेज नंबर 15 पर चित्र 3.7 को देखिए और अब इसे समझते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने परमाणु का प्रतिरूप जो दिया वह पूरी तरह से सही नहीं साबित हुआ था, जिसके बाद बोर ने भी परमाणु प्रतिरूप दिया। तो हम थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड और अब
बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ रहे हैं। बोर ने कक्ष या फिर कोष के बारे में बताया और इन कक्षों को 1, 2, 3, 4 या फिर KLMNO से प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी के KLMN अथवा O की त्रिज्या और ऊर्जा निश्चित होती है और इन्हीं कक्षाओं में जो कि वृत्ताकार होती हैं इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। उसके बाद बोर ने यह भी बताया कि इन कक्षों में कक्ष KLMNO में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का गुणज होता है। यहां पर h प्लैंक नियतांक होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, p इलेक्ट्रॉन का वेग होता है तथा r कक्ष की त्रिज्या होती है। कोणीय संवेग को इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है जो कि h/2π के मल्टीपल होता है। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर आगे इससे गुणा हम करते जाते हैं। उसके बाद बोर ने यह भी बताया कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में है अगर उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहे तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को बदलता है, या तो वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाए या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाए, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हमने बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप को भी समझा और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, परमाणु संरचना होता क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश की, सबसे पहले किसने बताया था, और फिर हमने परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज के बारे में पढ़ा, जहां इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ा, फिर हमने परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप पढ़ा, उसके बाद फिर रदरफोर्ड का प्रयोग व नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप को पढ़ा, जहाँ हमने रदरफोर्ड के जो प्रेक्षण थे उन्हें पढ़ा, फिर उसके जो निष्कर्ष निकले उसे भी पढ़ा, फिर निष्कर्ष से जो परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने उसे भी पढ़ा और उनके कमियों को भी समझा। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा और अंत में बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप को पढ़ते हुए इस सेशन को अब हम खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में हम परमाणु का आकार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, अवोगैड्रो संख्या और परमाणु की स्थिति, समस्थानिक और समभारिक जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अभ्यासार्थ प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करेंगे। मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।